हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 461। वहां से निकालकर एकदम तेज कदमों से चलते हुए वो आदित्य और सुनैना के रूम की तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन तभी आदित्य सुनैना के पहले जो रूम था उसका दरवाजा खुला और एक हाथ उसे रूम से बाहर निकला और उसने नताशा को तुरंत ही अपने रूम के अंदर खींच लिया। नताशा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह से उसे रूम के अंदर खींच लेगा, इसलिए एकदम से ही हड़बड़ा गई। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, कौन कौन हो तुम? क्या क्या कर रहे हो? चुप करो, मैं हूं तुम्हारी क्राइम पार्टनर। आखिर मेरे बिना तो तुम कभी ये सब कर नहीं पाती, इसलिए प्लीज इस तरह से चिल्लाओ मत और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या बेवकूफी करने जा रही हो तुम? उसे दूसरी लड़की ने नताशा के होठों पर उंगली रखकर चुप कराते हुए कहा। नताशा ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और एक तिरछी शैतानी मुस्कुराहट लड़की के चेहरे पर आ गई। वो लड़की और कोई नहीं, विराज की बहन अवंतिका थी, और जब से विराज उसकी वजह से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर बाहर गया है, तब से उसकी अपने भाई से कोई बात नहीं हो पाई। और उसे पता है इन सब की जिम्मेदार कहीं ना कहीं सुनैना और आदित्य है, और इसीलिए वो नताशा का इन सब में साथ दे रही है उनसे बदला लेने के लिए। और उसे लगता है कि ऐसा करके वो कहीं ना कहीं उन दोनों को अलग कर देगी तो उसे सुकून मिलेगा। सुनैना की वॉकी टॉकी तोड़ देने की वजह से नताशा इस वक्त गुस्से में एकदम तिलमिलाई हुई है, इसलिए वो गुस्से में वही गलती करने जा रही थी जिसका सुनैना आदित्य दोनों को इंतजार था। लेकिन अवंतिका उससे कहीं ज्यादा चालाक है और मन ही मन वो सुनैना से जलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आदित्य को पसंद करती थी। लेकिन जब उसे पता चला था कि आदित्य सुनैना का पति है, तब से ही उसे सुनैना से जलन है। और उसके बाद फिर विराज उसके भाई ने जो कुछ भी किया सुनैना के लिए और उसकी वजह से उसके भाई को जो कुछ कहना पड़ा, उन सब का भी जिम्मेदार वो सुनैना को ही मानती है, और इसीलिए वो सुनैना और आदित्य को अलग करने में नताशा का साथ दे रही है। अवंतिका नताशा को समझाते हुए बोली और नताशा एकदम ध्यान से उसकी बात सुनने लगी। अगली सुबह आदित्य और सुनैना को वहां पर पहुंचे हुए कई घंटे बीत चुके हैं और वहां से निकले हुए भी, इसलिए स्वीटी बहुत ज्यादा परेशान है। उसने रवि को भी कॉल करके इस बारे में बता दिया है और रवि ने नाजिम और सिक्योरिटी सबको अलर्ट कर दिया है। इसके अलावा नैना से उसने बात की थी तो अक्षत और विवान बाकी सबको भी इस बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो सभी आदित्य की विला आ गए हैं जहां पर स्वीटी अकेली थी गीता दी के साथ, और नैना अब उसके साथ ही बैठी हुई है। और वो सब अपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आदित्य और सुनैना का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नैना का हाथ पकड़कर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए स्वीटी बोली, दी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों हर बार ऐसा होता है उन दोनों के ही साथ, और कल पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं रह गया है। नैना उसे समझाते हुए बोली, हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा ने ऐसा किया इसलिए तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो, लेकिन इस बारे में इतना मत सोचो, वो दोनों कहीं भी हैं तो साथ में होंगे तो बिल्कुल ठीक होंगे। अक्षत भी स्वीटी को समझाते हुए बोला, और वो आदमी तो कल ही अरेस्ट हो गया था, और बाकी रिलेटिव भी जितने लोग इसमें शामिल थे वो सब जेल में हैं, तो ऐसा कौन कर सकता है। एक मिनट, तुम्हारा भाई विशाल, वो कल पार्टी में भी नहीं आया था तो कहीं वो? अपने भाई विशाल का नाम आते ही स्वीटी ने तुरंत ही उसकी तरफ देखा और वो थोड़ी सी कन्फ्यूज होते हुए बोली, हाँ नहीं मैं कुछ कह नहीं सकती विशाल भाई के बारे में, वो गुस्से में कुछ कर तो सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता वो आदित्य भाई का कुछ बिगाड़ पाएंगे। स्वीटी काफी कंफ्यूज होते हुए ये बात बोल रही है, और उसकी ये बात सुनकर नैना और अक्षत दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ मनस्वी का होटल। पिछली शाम से लेकर अब तक वो दोनों अपने होटल के ऑफिस में ही हैं, और जो कुछ भी हुआ था वो सारा मैटर सॉल्व करते हुए उन दोनों को काफी भागना दौड़ना पड़ा, और इन सब में उन्हें टाइम ही नहीं मिला अपने लिए और यहाँ तक कि किसी और चीज के लिए। अनय आराम से वहां सोफे पर टेक लगाकर बैठता हुआ बोला, थैंक गॉड सब सॉर्ट आउट हो गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। उसके सामने खड़ी हुई मनस्वी ने बहुत ही लापरवाही से जवाब दिया, ये होटल बंद हो जाता कुछ दिनों के लिए, बस और क्या। मनस्वी ने ये बात इस तरह से बोली जैसे कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं दिख रही, और उसे इतना ज्यादा कूल और चिल आउट देखकर अनय को बहुत ही हैरानी हुई और वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। अनय ने इस तरह हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखें बड़ी करके पूछा, सीरियसली मनस्वी ये तुम ही हो ना? ये बात तुम इतनी आसानी से इतनी कैजुअली कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारा होटल बंद हो जाता कुछ दिनों के लिए, और सच में इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? इतनी छोटी बात है ये तुम्हारे लिए। मनस्वी भी उसके पास ही आकर बैठती हुई बोली, क्यों तुम्हें कोई शक है क्या? वैसे सच कहूं तो ये अब इतनी बड़ी बात भी नहीं है मेरे लिए, और तुम हो ना मेरे साथ फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि और कुछ भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तुमसे ज्यादा। इतना बोलते हुए वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी, और उसकी ऐसी बातें सुनते हुए अनय को बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है, कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन फिर भी अपनी शादी के टाइम से लेकर अब तक वो जिस मनस्वी को जानता है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उसके लिए उसका काम, उसका होटल, उसकी पोजीशन, पावर, ये सब किसी भी शख्स से ज्यादा मायने रखती थी। और ये पैशन उसकी आंखों में, उसके एक्शन में भी दिखता था। लेकिन आज या फिर पिछले कुछ दिनों से वो कुछ अलग और अजीब ही बर्ताव करने लगी है। पिछले कुछ दिनों से ही वो इतना ज्यादा बदल गई है। वो अब कुछ ज्यादा ही मुस्कुराती है, खासकर जब अनय के आसपास होती है, और अनय को कहीं ना कहीं उसके अंदर आ रहे ये सारे चेंज अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी तक उसे इन सारी चीजों की आदत नहीं पड़ी और कहीं ना कहीं वो पहले वाली मनस्वी ही पसंद आने लगी थी, और उसके साथ रहते हुए उसे उसके वो एटीट्यूड और खड़ूस स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी की आदत पड़ गई थी। वो कभी भी नहीं चाहता था कि वो उसके लिए इतना चेंज हो जाए। मनस्वी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, और मैं तो हूँ ही हमेशा तुम्हारे साथ, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लिए किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन या फिर तुम्हारी वीकनेस बनूं। अनय मनस्वी की आंखों में देखते हुए एकदम सीरियस होकर ये बात बोल रहा है। उसकी बातों में कहीं ना कहीं उसका गिल्ट भी साफ नजर आ रहा है, जो कि मनस्वी भी समझ रही है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि जो कुछ भी प्रॉब्लम वहां पर चल रही है उन सारी चीजों का ब्लेम और गिल्ट अनय खुद पर ले रहा है। मनस्वी ने तुरंत ही अनय के होठों पर अपनी उंगली रखी और उसे चुप करते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं, और तुम कभी भी मेरी वीकनेस नहीं बन सकते। तुम तो मेरी स्ट्रेंथ हो। पता है, तुम्हारी वजह से अब मैं भी कितना अलाइव फील करती हूँ। ऐसा लगता है मेरे भी जीने की कोई वजह है, नहीं तो वो रोबोट जैसी जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है। पता नहीं क्यों मैंने इतना टाइम वेस्ट किया पहले। मैं तुम्हारी वर्थ और वैल्यू क्यों नहीं देख पाई। मुझे बहुत अफसोस होता है, और अगर अब तुम ऐसे बोलोगे ना तो मुझे और भी बुरा लगेगा, इसलिए प्लीज।
इतना बोलते हुए मनस्वी आगे जाकर कसकर उसके गले लग गई, और उसने अपना चेहरा अनय की गर्दन में छुपा लिया और उसके एकदम ही नज़दीक जाने लगी, क्योंकि वो इस वक्त काफ़ी इमोशनल भी हो गई है। अनय ने भी उसकी बातों के बारे में सोचते हुए हल्के से अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ उसके चारों तरफ घुमाते हुए उसे अपनी बांहों में भर लिया और उसे साइड से उठाकर अपनी गोद में ही बिठा लिया। वो दोनों कुछ देर तक इसी तरह बैठे रहे, और फिर कुछ सेकंड बाद अनय ने हल्के से अपनी आंखें खोली और मनस्वी के बालों में हाथ फेरता हुआ बहुत ही प्यार से बोला, हर चीज का एक सही वक्त होता है, और हम दोनों को भी एक दूसरे की वर्थ रियलाइज करने में टाइम लग गया, लेकिन इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, और अब जब हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब हैं तो हमें ये टाइम एंजॉय करना चाहिए, ना कि इस तरह से अफसोस। अनय ने मनस्वी के कान में ये बात बोलते हुए उसे समझा कर कहा, तो मनस्वी ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर अपना सिर थोड़ा सा पीछे करते हुए उसकी तरफ देख कर बोली, हाँ ठीक है, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि अब तुम भी इस तरह से नहीं सोचोगे। और रही बात काम की, मैं अभी भी उसे लेकर सीरियस हूँ, लेकिन बस अब मेरी प्रायोरिटी बदल गई है, तुम मेरे लिए अब सबसे पहले आते हो। इतना बोलते हुए मनस्वी ने बहुत ही गहराई से उसकी तरफ देखा, तो उसकी बात सुनकर अपनी आंखें हल्के से बंद करते हुए अनय मुस्कुराया और फिर आंखें खोलकर उसकी तरफ ही देखने लगा। और जैसे ही उन दोनों की नजरें मिली, मनस्वी को पता नहीं क्या सूझा, वो आगे जाकर उसके होठों पर अपने होठ रखते हुए एकदम से ही उसे किस करने लगी। पहले तो अनय इस बात से एकदम चौंक गया, लेकिन फिर उसके दोनों गालों पर अपने हाथ रखते हुए वो भी उसे एकदम डीपली किस करने लगा। अनय की तरफ चेहरा करके मनस्वी इस वक्त उसकी गोद में बैठी हुई है, और वो दोनों बहुत ही गहराई और बेताबी से एक दूसरे को चुनते हुए इस कदर उस किस में खोए हुए हैं कि उन्हें और किसी बात का ध्यान नहीं। यहाँ तक वो दोनों ये भी भूल चुके हैं कि वो दोनों अपने होटल के ऑफिस केबिन में हैं। वो दोनों अभी भी इस कदर उस किस में खोए हुए हैं कि उन्हें और कुछ भी नहीं सोच रहा। और तभी एकदम से उसके केबिन का दरवाज़ा खुला, और दरवाजे से अंदर आई हुई एक आवाज़ इन दोनों के कानों में पड़ी, मैडम, वो एक कांस्टेबल ये पेपर लेकर आया है, इस एक पेपर पर आपके साइन रहे।